Hare Krishna. तो आज दो बहुत उच्च कोटि वैष्णव के जन्म तिरुभाव एवं आविर्भाव तिथि है। श्री रामचंद्र कविराज का तिरुभाव तिथि है और गोपाल भट्ट गोस्वामी के आविर्भाव तिथि। तो आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में हम एक वैष्णव कृपा प्रार्थना याचन करेंगे भजन। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ये दशे करुणा करी। ठाकुर दयार सागर ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ये दासे करुणा करी। दिया पद छाया स्वधा हे आमाय तुमर चरण धरी। दिया पद छाया स्वधा हे आमाय तुमर चरण ध छय बेगदमी छय दोष शोधी छय गुण देह दासी। छय बेगदमी छय दोष शोधी छय गुण छय सत्संग देह हे आमारे छय सत्संग देह हे आमारे बस छे संगे रे बस छे संगे रे एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमार नाही हरि नाम संकीर्तन तुमि कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। तुमि कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदसे करुणा करी। दयार सागर इदसे करुणा करी। कृष्ण से तो मार कृष्ण दीते पार तुमार शकतिया छे। कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार अमित कंगाल कृष्णा कृष्णा बली धाई तब पाचे पाचे। अमित कंगाल कृष्णा कृष्णा बली धाई तब पाचे पाचे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदसे करुणा करी दयार सागर इदसे करुणा करी दिया पद छाया शुद्ध हे आमारे दिया पद छाया शुद्ध हे आमारे तुमार चरण धरी तुमार चरण धरी प्रार्थना का अनुवाद इस प्रकार हे वैष्णव ठाकुर आप तो दया के सागर हैं इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरण में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ आप कृपा पूर्वक मेरे षड वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे छह दोषों को सुधार कर छह गुणों को प्रदान कीजिए हे वैष्णव ठाकुर मुझे छह प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ छह वेग वाणी मन क्रोध जिह्वा उदर और जननेन्द्रिय का वेग छह दोष अत्यधिक आहार भक्ति प्रतिकूल चेष्टा प्रजल्प भक्ति के नियम में दुराग्रह अथवा अनाग्रह कुसंग भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों का ग्रहण करने की इच्छा छह गुण भक्ति साधन में उत्साह निश्चयता धैर्य भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान कुसंग त्याग सदाचार छह सत्संग प्रीतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना उनके समीप हृदय की बात व्यक्त करना भक्ति रहस्य को सुनना प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना और प्रसाद सेवन करना एकाकी हरिनाम संकीर्तन करना मेरे बस की बात नहीं है अतः आप मुझे कृपा कर कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बिंदु मात्र प्रदान कीजिए श्री कृष्ण आपके हृदय के धन है अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं मैं तो कांगाल दीनहीन हूँ केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ इस प्रकार ये वैष्णव प्रार्थना आज का इस शुभ अवसर पर वैष्णव के चरणों में ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए तो श्रीमद् भागवतम ये ग्रंथ भागवतम है और आज भी उन्हीं के साथ महाप्रभु का परिकर श्री रामचंद्र कविराज एवं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी दोनों महान व्यक्तियों का आविर्भाव एवं तिरोभाव तो इस अवसर पर सभी हमें उनसे कृपाविलास करेंगे पहले श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है आज का तो थोड़ा उनको अध्ययन करेंगे इसके बाद फिर उनके बारे में चर्चा करेंगे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंध गजेंद्र की समर्पण स्तुति अध्याय तीन गजेंद्र की समर्पण स्तुति श्लोक संख्या 25। श्लोक इस प्रकार जे जे विषय नाहमिहा मुया किम् मंतर बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि काले नयस्य विप्लवम् स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् जिजीविषेनाहमिहा मुया किम् मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवम् स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् जिजीविषेनाहम् मिहा मुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवम् स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। जे जे विषयनाम मोयकिम् मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् अमि कालेन स विप्लव मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवम् स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् जिजीविषेनामिह मोय किम् मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवम् स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् जिजीविषेनाहमिह मुया किम् मन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्याम् इच्छामि कालेन यस्य विप्लवम् तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। शब्दार्थ जिजी विषय दीर्घ काल तक जीने की इच्छा, नाम नहीं, अहम मैं, यह इस जीवन में, अमुया या अगले जीवन में, इस संकट से बचे जाने पर मैं जीना नहीं चाहता। किम क्या लाभ, अंतः भीतर से, बहिः बाहर से, च तथा आवृत्या अज्ञान से आच्छादित, इभयोन्याम हाथी रूप इस जन्म में, इच्छामि मेरी इच्छा है, कालेनम काल के प्रभाव से, नाम नहीं है, यस्य जिसका, विप्लवहम संहार नाश, तस्य उस आत्मलोकावरणस्य आत्म साक्षात्कार के आवरण से, मोक्षम मोक्ष। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ, जो एक बाह्य आच्छादन है और भीतर से अज्ञान का आच्छादन है। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अज्ञान के अंधकार से आच्छादित है। इसलिए वेदों का आदेश है कि मनुष्य को गुरु के माध्यम से श्री भगवान तक पहुंचना चाहिए, जिसका वर्णन तथा स्तुति गौतमीय तंत्र में इस प्रकार किया गया है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने ज्ञान के दीपक से मेरी उन आँखों को खोल दिया है जो अज्ञान के अंधकार से अंधी हो चुकी थी। भले ही मनुष्य इस भौतिक जगत में जीवन संघर्ष क्यों ना करे, किंतु उसके लिए सदैव जीवित रह पाना असंभव है। फिर भी मनुष्य को समझना चाहिए कि यह जीवन संघर्ष अज्ञान के कारण है, क्योंकि प्रत्येक जीव परमेश्वर का सनातन अंश है। किसी को हाथी या भारतीय या अमेरिकी पुरुष के रूप में जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को एकमात्र जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। अज्ञान के कारण हम प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्रत्येक जीव को हम सुखी तथा आनंददायक मानते हैं, किंतु इस भौतिक जगत के पतित जीवन में ब्रह्मा के जीवन से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक कोई भी वास्तव में सुखी नहीं है। हम सुखपूर्वक रहने के लिए अनेक योजनाएं बनाते हैं, किंतु इस भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं हो सकता। भले ही हम इस जीवन में या उस जीवन में स्थायी आवास बनाने का कितना ही प्रयत्न क्यों ना करें। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्निमीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे अहम श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने कृष्णात् किमपि परमतत्त्वमहं न जाने कस्तूरी तिलकं ललाट पटले बक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात् बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासह कनक कपिशं वैजयन्ती च मालां रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः प्राविशत गीतकीर्तिः मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम् जिजी विषय नाह मिहा मुया किम मंत्र बहिश्चावृत भयोन्या इच्छामि काले नयस्य विप्लव स्तस्यात्मलोक लोका वारणस्य मोक्षम घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ हो क्या लाभ जो एक बाह्य आच्छादन है और भीतर से अज्ञान का आच्छादन है। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूं। यह आवरण काल के प्रभाव से निवृत्त नहीं होता। तो हम गजेंद्र का स्तुति के प्रसंग में हमें श्रवण करते आ रहे हैं कैसे गजेंद्र स्वर्ग के एक राजा इंद्रद्युम्न नाम से ख्यात थे, किंतु इतने होने पर भी और वो थे भगवान विष्णु का अनन्य भक्त भी थे, किंतु ये सब सत्वे किस प्रकार व्यक्ति इतने उच्च पद से नीचे गिर सकते, तो उसका दृष्टांत यहां पर दिया जा रहा है। क्योंकि कैसे स्वर्ग के राजा इंद्रद्युम्न जब अपना सभासद के साथ वहां बैठे हुए थे, तो उसी समय कौन से ऋषि थे, अगस्त्य ऋषि ने उनके दर्शन के अभिलाषी होकर वहां पधारे। पर उन्होंने अपना पद मर्यादा से इतना मोहग्रस्त थे तो उन्होंने मुनि ऋषि को आदर सम्मान एवं आतिथ्य का कोई उपाय नहीं ढूंढा। जिस प्रकार वो सभा में बैठे हुए थे उसी प्रकार बैठे रहे। ऋषियों का कार्य है संसार का कल्याण करना है, तो स्वर्ग में इतने बड़े आधिपत्य प्राप्त होकर भी मन में किस प्रकार अहंकार गर्व है, तो उन अहंकार गर्वों को चूर्ण करने के लिए उन्होंने वहां से चल दिए और उनको श्राप दे दिए कि इस प्रकार विशाल आधिपत्य को प्राप्त होकर किसी वय ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तियों का आदर सम्मान करना आतिथ्य करना नहीं सीखा तो इससे बढ़िया तुम हाथी का योनि में चले जाओ। तो जब होश आया तो राजा इंद्रद्युम्न ने तो उनका चरण पकड़कर बहुत विनती की, पर ऋषियों का वाक्य कभी वापस नहीं जाता। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो श्राप दे दिया, इसका तो निवारण नहीं हो सकता है, पर तुमको इस योनि में रहना पड़ेगा जब तक भगवान विष्णु का स्पर्श और भगवान विष्णु तुम्हारे उद्धार के लिए नहीं आएंगे तब तक तुम हस्ती योनि में पड़े रहोगे। तो इस प्रकार उन्होंने अब तक जितने स्तुति की है, यहां 24 श्लोक में यहां हम सुनते आ रहे हैं, गजेंद्र पर्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु ऐसे ही नाम नहीं लेते हैं, सभी भगवान का सारे लक्षणों को बताते हैं पर किसी का नाम नहीं लेते हैं। पर लक्षण से युक्त होने के कारण जब घड़ियाल ये मगरमच्छ ने तो कहते हैं कि 1000 वर्ष तक उन्होंने उनके साथ मगरमच्छ के साथ संघर्ष किया। और मगरमच्छ ये भी एक गंधर्व थे, हुहु नाम का गंधर्व, ये भी इसी प्रकार ऋषियों का अपमान किया। तो एक ऋषि, कौन से ऋषि थे, नहीं अगस्त्य तो देवल ऋषि उनका दर्शन करने के लिए आए थे गंधर्व लोक में, तो उनका आतिथ्य सत्कार किए और दोनों स्नान करने के लिए त्रिकुट पर्वत के नीचे एक बहुत सुंदर पुष्करणी, उस पुष्करणी में गए। तो देवल ऋषि उन्होंने स्नान किया एवं भगवान सूर्यदेव को तर्पण करने के लिए उन्होंने हस्त में जल लेकर उनका तर्पण कर रहे थे। इस समय उन्होंने मजाक करके हुहु ने पानी का नीचे जाकर उनका पैर पकड़ा, उन्होंने घबरा गए, बोले कि क्या है, शायद मगरमच्छ आ गया मुझे पकड़ लिया। तो इस भय से तो उन्होंने ऐसे पैर हटाया, फिर उन्होंने जब ऊपर आए बोले ऐसे क्यों किया, मैंने तर्पण कर रहा था, तुम मगरमच्छ से ऐसे जल का नीचे आकर मेरे पैर पकड़ते तुम मगरमच्छ बन जाओ। तो उन्होंने इसी प्रकार ऋषियों का वाक्य अन्य था तो वो भी हो गए, लेकिन उन्होंने भी बड़े काकती मिनट की। पर ऋषि ने बताया कि जब तुम भक्तों का चरण पकड़ोगे एवं भगवान विष्णु के द्वारा तुम्हारा छेदन होगा तब तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रसंग से हाथी और कुंभीर और उसी त्रिकुट पर्वत के नीचे जो पुष्करणी वहां ये जो इंद्रद्युम्न जो अभी हाथी रूप में है अपना पूरे परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। पूरा आप तो जानते हैं हाथी किस प्रकार स्नान करते हैं, है ना, तो हम देखें ऋषिकेश में तो वो हाथी आते हैं पूरा जंगल को लगा हुआ है, वो पानी में उतरते हैं पूरा झुंड के झुंड 10-20 एक साथ में, आते पानी को पूरा एकदम फेंकते हैं और उछालते हैं, उसे पूरा डूबते हैं, घंटों घंटों तक, चार पांच घंटा तक वहीं पड़े रहते हैं गर्मी में। फिर ऊपर आएंगे, फिर मिट्टी उछालेंगे, सूंड में लेंगे, फिर शरीर में डालेंगे, उनका काम ऐसे। तो इस प्रकार उपद्रव करते हुए, स्नान करते हुए जब देखा वहां पे वो मगरमच्छ, और ये तो शापग्रस्त दोनों ही है, और अभी भगवान का जो योजना है उसी का अनुसार अभी दोनों का मोक्ष होना है। तो फिर उन्होंने आकर पकड़ लिया उनका, और जितने भी उनका परिवार स्वजन थे वो भी उनको मदद करने के लिए सहायता की, पर सभी विफल हो गए। गजराज ने उन्होंने खूब अपना ताकत लगाई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अंतत गत्वा दीर्घ काल तक भूख प्यास में उस जल में खड़े रहे, और अपना सगे संबंधी जो थे ये सब एक एक करके भागने लगे, भागने लगे। अकेले गजेंद्र वहीं पड़ा रहा और देखा इतने वर्षों तक जब दोनों का इस प्रकार पानी में, मगरमच्छ का यद्यपि विशाल काय शरीर हस्ती का, फिर भी पानी में मगरमच्छ का ताकत अधिक है। तो उन्होंने पकड़कर उनको रक्त श्राप जो होता था उससे दिन दिन उनका शरीर क्षीण होने लगा और बल भी क्षय होने लगा, तो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा, और कोई आशा न देखते हुए उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का भक्त होने के कारण जो स्तुति भगवान को वो करता था इंद्रदिम्न के रूप में, अंत समय में, लास्ट मोमेंट में उन्होंने उन स्मृतियों को याद की, स्तुतियों का पाठ करने लगा, जल से कमल फूल को उठाया सोने से और भगवान को पुकारा। तो भगवान सर्वांतर्यामी, सब जानने वाला है, तो उन्होंने जो वरदान दिए थे ऋषियों ने, तो उनका बात को भी सत्य कराना, और इस समय उन्होंने चक्र के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर आकर वहां पर पहुंच गए, और तो ग्रह को खंडन किए और गजेंद्र को उधार किए। तो उसी समय का बात ये जब गजेंद्र इस प्रकार पुकारा, भगवान आ गए, तो ये कहते हैं कि इस ग्रह से तो मैं मुक्ति नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि ये ग्राहक इतने बड़ा, अगर मैं ये मगरमच्छ के कवल से मैं निकल जाऊं तो फिर क्या करूं, इतने बड़े शरीर प्राप्त होकर एक मगरमच्छ मुझे 1000 वर्ष तक पानी में रोक रखा, तो इस अज्ञान अंधकार से भरा ये शरीर को लेकर, विशाल का शरीर को लेकर ये हाथी योनि में मैं क्या करूं, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन आत्म प्रकाश का जो आवरण अज्ञान है उससे मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो इसलिए कहते हैं जीजी विषय न, मैं जीना नहीं चाहता हूं यह इस योनि से बा इस जन्म में अमुया, और इसके मुक्त होने के पश्चात मैं और अधिक समय जीना नहीं चाहता हूं। क्यों, क्या उसमें बुराई है? ये कहते हैं कि अंतर बहिश्च आवृत आवृतया, क्योंकि इतने विशाल काय शरीर भीतर से बाहर दोनों अज्ञान अंधकार में भरा पड़ा हुआ है। ये विशाल काय शरीर जो है ये पंच तत्व में निर्मित है ना, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा, ये भी जड़ है, अज्ञान है, और अंदर से अज्ञान भी है। अगर अज्ञान मेरे अंदर नहीं होता तो मैं क्यों इस प्रकार जल में आकर इस प्रकार अपना परिवारों के साथ ये सब ये जो स्पोर्टिंग कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, ये क्यों करता? उतने समय तो मैं भगवान का आराधना करके मेरा जीवन को कल्याण बना सकता था, लेकिन इस प्रकार योनि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं आवृतया ईभ योनिया, ईभ मतलब हस्ती, हाथी के योनि में फिर मैं रहना नहीं चाहता हूं। इच्छामि कालेन नयस्य विप्लव, है ना, मैं यही चाहता हूं, मैं यही इच्छा करता हूं काल के प्रभाव से जिसका नाश नहीं होता है। काल अज्ञान का नाश नहीं कर सकता, अज्ञान का नाश किसने करेगा, ज्ञान के द्वारा ही, है ना, ज्ञान निर्वर्त्य ये अज्ञान। तो काल के द्वारा जिसका नाश नहीं हो सकता है, न कालेन यस्य विप्लवः तस्य आत्म आलोक, आत्म का प्रकाश का आवरक जो अज्ञान है उसी का नाश मैं चाहता हूं, यही मेरे लिए मोक्ष है। इस पर श्रीधर स्वामी ने बहुत बढ़िया टीका लिखी है। ये कहते हैं न च ग्राहत शरीरस्य मोक्षणेन अहम् जीवितुम् इच्छामि, कहते हैं कि इस ग्राह से मगरमाच्छ का जो आक्रमण बा कबल से मैं मुक्त होना नहीं चाहता हूं। तत्र हेतु, क्यों नहीं चाहते हैं, सभी लोग जो विपत्ति आपत्ति में जो पड़ते हैं तो सभी भगवान को कि दूसरे को पुकारते हैं कि सहायता के लिए, तो सहायता करने पर अगर उसका जीवन रक्षा हो तो फिर आगे के लिए उसका जीना सुगम हो जाता है, तो सभी तो वही चाहते हैं। लेकिन ये ग्रह, ये गजेंद्र, ये पूर्व जन्म का सारे कृत कर्म जो भगवान का उपासना की थी तो उसका स्मरण करते हुए अब इस समय जबकि ये विपत्ति समय सभी विस्मृत हो जाते हैं, और भगवान रामचंद्र का विषय में एक श्लोक महाभारत में शायद कि रामायण में वाल्मीकि रामायण में आता है, कहते हैं असंभव हेम मृगस्य जन्म तथापि राम लुलुभे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले पुंसोपि धीय मलिनो भवति। कहते हैं कि भगवान राम अंतर्यामी है, स्वयं परम ब्रह्म भगवान है, उनको भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान है, पर फिर भी जब विपत्ति आने लगती है तो भगवान के द्वारा ये सब भगवान का इच्छा से है सब कार्य चलता है, तो जो विपत्ति आती है भगवान का इच्छा से, तो उनको किसी प्रकार अंगीकार करते हैं भगवान, ये मनुष्य नर देह धारण करके तो वो जो हेम मृग स्वर्ण मृग जो संसार में असंभव है, ऐसे ही कोई सोने में कोई मुर्गे होता है क्या, नहीं होता है, फिर भगवान राम ये भगवान अंतर्यामी है सब जानते हैं, फिर भी लुलुभे मृगाय उस मृगो को पकड़ने के लिए तो उनका मन में इसी प्रकार लुलुप्तता जागृत हुई। तो कहते हैं कि प्राय समापन विपत्ति काले, जब विपत्ति आने लगती है तो उसी समय पुरुष कितने भी विद्वान हो, कितने भी जानकारी और विवेकी हो, तो उसका विवेक खो जाता है, बुद्धि आवृत हो जाती है। तो इसलिए प्राय समापन विपत्ति काले पुंसोपि धियो, धीय अर्थात धीर, विद्वान व्यक्ति का जो पुरुष का जो मति है वो भ्रमित हो जाती है, किंतु गजेंद्र अभी अंत समय में तो पूर्व जन्म का सारे स्मृति आ गई सभी। देखो ये हुआ जब समस्त आशा भरसा परिवार जन और जो सगे संबंधी सभी उनको छोड़कर चले गए, ये संसार का नियम है, लेकिन व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, सांसारिक मोह में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो अपना पारिवारिक संबंध से इतना मोहित हो जाते हैं तो एक दूसरे को जकड़ कर बैठते हैं, अपना आत्मकल्याण का मार्ग बिल्कुल भूल जाते हैं। गजेंद्र यही शिक्षा देना चाहते हैं कि किसके भरोसा करूं, जिनके साथ मैंने साथ निभाया और जिनके साथ इतने दिन तक जिनको खिलाया पिलाया सब सुरक्षा प्रदान की, वो लोग अभी मुझे विपत्ति समय में छोड़कर चले गए और निराश्रय होकर भगवान को पुकारने लगा। और भगवान यही चाहते, नमो अकिंचन बिताय निवृत गुण ब्रिले। तो यही अकिंचन भाव से जिसका कोई संसार नहीं है उसी का ही वो गोविंद सहायक होते हैं। तो इसलिए उन्होंने जब भगवान को पुकारा पुकारा तो भगवान आ गए और भगवान जानते हैं अभी ठीक समय आ गया। कहते हैं ना इंग्लिश में स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, तो उसी समय उनको शिक्षा देने के लिए आ गए। तो उसे सारे स्मृतियां आ गई, अब वो शरीर बंधन से मुक्त होना चाहता है। अज्ञान अंधकार से जो जन्म जन्मांतर मनुष्य दुख कष्ट को पाता है तो उससे वो छुटकारा पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए कहते हैं श्रीधर स्वामी कहते हैं क्यों ये ग्राह कबल से मुक्त होना नहीं चाहते हैं? तो तत्र हेतु हो अमुया अंतर बहिष्य अभिवेक व्याप्तिया गज जात्या किम प्रयोजनम। कहते हैं जिस शरीर का भीतर बाहर अज्ञान से भरे हुए हैं और गज कुल में एक हाथी के योनि में जन्म हुआ है, इसका क्या प्रयोजन है ना? तो आत्मलोकस्य आत्म प्रकाशस्य, कहते हैं श्लोक में है ना आत्मलोकस्य अर्थात आत्म प्रकाश, आत्म का प्रकाश जो है हम सभी भगवान का अंश, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लेके हम सब भगवान का अंश है, सनातन अंश है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो होने पर भी इतना स्वप्रकाश होने पर भी फिर भी ये कहते हैं आत्म प्रकाशस्य यद आवरणम, ये आत्म प्रकाश का आवरण कौन है न अज्ञान, अज्ञान तस्य तस्य एव तु मोक्षम इच्छामि, उसी आत्म प्रकाश का जो आवर कहे अज्ञान, वो अज्ञान से मैं मुक्त होना चाहता हूं, न कि ये हस्ती योनि से। यद्वा हाँ क्यों ये कहते यस्य मोक्षस्य कालेन नाशो नास्ति, कहते हैं अगर मैं हस्ती योनि से मोक्ष प्राप्त कर लूं, मैं उससे छूट जाऊं तो आगे क्या करूं, और विपत्ति नहीं आएगी ऐसे तो कोई संभावना नहीं है, फिर भी आ सकती है। तो जिस अज्ञान का नाश काल के द्वारा संभव नहीं है, क्यों श्रीधर स्वामी लिखते हैं ये कहते हैं यस्य मोक्षस्य कालेन नाशो नास्ति यद्वा देहस्य बंधो देह नाशे नश्यत नश्यत इव किम तन मोक्ष प्रार्थने। अगर मैं कहूं कि अगर ये शरीर जब तक है तब तक हम रहेंगे और जब शरीर नाश हो जाएगा फिर हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये कहते मोक्ष कैसे होगा, अज्ञान नाश हो तभी तो मोक्ष होगा, तो अज्ञान कैसे नाश होगा? तो उसके लिए ये कहते हैं आत्मलोक वारणस्य तु कालेन कालेन विप्लव नास्ति, काल के द्वारा ये जो अज्ञान का नाश, विप्लव मतलब नाश, नाश नहीं होता। क्यों ना ज्ञानैक निवर्तत्वम, ज्ञान के द्वारा अज्ञान ही नाश होता है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येन नाशित आत्मवान, भगवान ने कहा ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान नाश होता है, अतः तस्यैव मोक्षम इच्छामि न न ग्राहक बलात्। तो इस प्रकार ये गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, समय हो गया फिर थोड़ा ये देखेंगे। तो इस प्रकार गजेंद्र किस प्रकार अभी ज्ञान में स्थित हो गया, अभी वास्तव में जो इतने हजार वर्ष तक जो ग्राह मगरमाछ के कवल में जो कष्ट भोग रहा था और ज्ञान के द्वारा सारे उनका कष्ट मिट जाता है और फिर भगवान किस प्रकार आकर उनका सुरक्षा प्रदान करते हैं और उभय का उद्धार हो जाता है। आज भी है एक बड़े दो बड़े महान वैष्णव का जन्म एवं तिरुभाव तिथि है। श्री कृष्ण रामचंद्र कविराज उनका तिरुभाव तिथि आज है। आज का तिथि पर उनका वृंदावन में उनका शरीर का उनको वैकुंठ भगवत धाम प्राप्ति हुई थी। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का पार्षद थे। तो जो कृष्ण रामचंद्र कविराज गोस्वामी कृष्ण लीला में ये करुणा मंजरी थे, करुणा मंजरी, और उन्होंने श्रीखंड वर्धमान जिला के श्रीखंड नाम के ग्राम में पिता चिरंजीव सेन, माता माता सुनंदा देवी, पिता चिरंजीव सेन एवं माता सुनंदा देवी के गर्भ से उन्होंने जन्म हुए थे। तो उनके भी और एक छोटे भाई थे गोविंद, इनका नाम रामचंद्र और छोटे भाई का नाम गोविंद। बाल्यकाल में तो पिताजी के वियोग हो गया, पिताजी का निधन हो गया, दुखी हो गए, और छोटे छोटे थे, माता उन छोटे दोनों बालकों को लेकर अपना पिताजी जो दामोदर कविराज जो कि कौन सा कुमार ग्राम निवासी उनका घर में चले गए। वहां दोनों रहे, दोनों भाई वहीं पर रहे, नाना जी के घर में वहां रहे। तो थोड़े देर में उन्होंने वहां परित्याग करके फिर दूसरे गांव में आ गए। कौन सा गांव में आ गए थे वो? याजी ग्राम वो आ गए। वहीं आकर वहीं याजी ग्राम में उनके छोटे भाई गोविंद वो भजन करते थे और वहीं आकर रह गए। उन्हीं को श्रीपाठ कहा जाता है कि अर्थात उन्हीं का ही वही आवास बन गया, वहीं पे दोनों रहने लगे, बड़े होने लगे। तो यौवन आया तो फिर माता ने माने विचार की कि पुत्र का विवाह होना चाहिए। तो एक सुंदर कन्या के साथ, जैसे रामचंद्र कविराज का जैसे मधुर स्वभाव है और उन्हें बड़े विद्वान थे, कवि थे, इसलिए कविराज ये तो जीव गोस्वामी उनको उपाधि दिए, कविराज उपाधि, इतने बड़े विद्वान थे और कवि भी थे। तो जीव गोस्वामी उनका पांडित्य में और इसका प्रागल्भ्य में अत्यंत प्रसन्न होकर उनको कविराज उपाधि दी। कविराज मतलब कवियों में जो राजा है, किंग ऑफ द पोएट्स। तो इस प्रकार उन्होंने विवाह कर दिए रत्नमाला नाम का एक कन्या, सुंदर जैसे अनुरूप वर कन्या भी उसी प्रकार। उन्होंने वहां पर विवाह के लिए गए, वहां पर विवाह हुआ। जब बारात लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ता में श्रीनिवास आचार्य के घर आता है, इसी गांव देकर वो आए। तो श्रीनिवास आचार्य उन्होंने भागवत पाठ में निमग्न थे, और भी जो लोग उनके शिष्य लोग और भी गांव के लोग बैठे हुए थे, सभी श्रवण कर रहे थे। इसी समय प्रोसेशन जो आया बाजे गाजे के साथ है, तो थोड़ा सा इतना निमग्न थे श्रीनिवासचार्य, तो उनको वो देखे नहीं। जब एकदम नजदीक आ गए तो उन्होंने मुंड उठाकर सिर उठाकर उनको देखने लगे, और जब देखे ये घोड़े पर सवार थे और पालंकी में वो वधु वो आ रही थी। और जब देखे इनको रामचंद्र सेन को देखे तो तुरंत अपना जो शिष्य वृंद और जो भागवत श्रवण में जो बैठे हुए थे उनसे गए, ये कौन ये लड़का, इतने सुंदर देखते तो लगता है, उस कपाल को देखकर, कपाल को देखकर उन्होंने पूरा प्रेडिक्ट कर दिया, भविष्यवाणी कर दी कि ये लड़का, ये तो लगता है ये कैसे संसार बंधन में ये फंस गया, इसका तो भगवान का चरण में समर्पित होना चाहिए, ये संसार को माया को कैसे समर्पित हो गया इसने, कैसे क्या है। वो धीरे से चुपके से वो अपना शिष्यों का सभा में वो ऐसे ही बोले, और जो उनका शिष्य थे तो जो कुछ सुने होंगे, तो उन्होंने बोले कि ये जो श्रीखंड निवासी चिरंजीव सेन है तो उनके ये पुत्र है, ये पुत्र है, बड़ा विद्वान है, पंडित है और कवि भी है, और ये वैद्य कुल के है, वैद्य कुल के। तो श्रीनिवास वो हंसने लगे, बाबा इतने होने पर भी ये कैसे संसार मोह में फंस गया, लेकिन इतना प्रोसेशन में बाजे गाजे बाज रहे थे, ये कैसे वो दुल्ला जो रामचंद्र कैसे सुनाई पड़ा, उनको तो सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन वैष्णव का इच्छा इतने प्रबल है, उन्होंने उनका मुख से जो वाणी निकली गई तो वो कैसे सत्य में स्थापित हो, तो उसके लिए उन्होंने वहां से चले गए। तो फिर अपना कार्य में वो लगे, भागवत श्रवण करने लगे, तो वहां जाकर घर में पहुंचकर तो अपना वेशभूषा उतार दिए, और जो श्रीनिवास आचार्य जो भी बोले थे वही उनका माने कर्ण में गूंज रहा था, क्या बोले संत महात्मा ने, क्या बोल दिया, तो ऐसे ही, और वहीं से विवाह बंधन से पूरा वैराग्य आ गया, नहीं ये विवाह बंधन, ये संसार बंधन में मैं नहीं रहूंगा। कैसे कैसे रात बीता, तो सुबह उठकर उन्होंने फिर आ गए श्रीनिवास आचार्य के पास, फिर आकर उनका चरण में पड़ गए, प्रभु मुझे संसार बंधन से आज मुझे रक्षा करें। तो क्या बात है, जब चरण में उनका पैर पर पड़ गए, तो वो भी श्रीनिवास आचार्य वो भी महान व्यक्ति थे, तो उनको नीचे से उठाए, गले लगाए और प्रेम आलिंगन करते हुए उन्हें कहे कि आज तुम्हें मेरे बांधव हो। तो फिर इसी प्रकार तो उनके सानिध्य में रहकर तो दोनों का ये तो बोले कि ठीक है आप अगर संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, अच्छी बात है, तो आ गए तो ठीक है, लेकिन आपने विवाह कैसे किया ना, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे अपना चरण में रखिए। तो उन्होंने रखे, तो धीरे धीरे उनको कृष्ण मंत्र में दीक्षित किए, तो उनका शिष्य बन गए। तो घरे गृह में जब नववधु उन्होंने देखा कि काल ही हमारे विवाह होकर में बारात में मेरे पति के साथ घर आया, तो आज उन्होंने कहां चले गए। और जब आए तो ये भी इसी प्रकार मधुर, और उन्हें सुनाने लगे उन्होंने कि इस प्रकार हमारे गुरु श्रीनिवास आचार्य, तो उनका उनके पास मैंने रहा, उनका सेवा की है, तो ये सब जब बताए उन्होंने, उनका मन में भी इस प्रकार भक्ति भाव और संसार के प्रति वैराग्य आने लगा, किसके, अपना पत्नी रत्नावली के हृदय में। ऐसे नहीं कि पति अभी विवाह किए तो स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है वो अभी निभाए नहीं और चल दिए वैराग्य बनकर, तो ऐसे ही वो व्याकुल नहीं है, अधिक से अधिक उन्होंने प्रसन्न थे, जो सास है तो उनको देखकर प्रसन्न थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कैसे कविराज को रामचंद्र को लाने के लिए वहां से वापस लाकर फिर गृहस्थ बंधन में फिर उनको रखने के लिए वो कोशिश करके गांव कुछ लोगों लेकर गए, लेकिन जो लोग उनके पास गए देखे कि उनका किस प्रकार श्रीनिवास आचार्य और उनका भाव और किसी विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति का किसे अलौकिक दृष्टांत देखकर दृश्य देखकर उन्होंने वही अपना हृदय परिवर्तन हो गए, सभी को सभी उनसे दीक्षा ले ली। उनसे उनका छोटे भाई गोविंद ये भी उनसे दीक्षा ले ली, तो वहीं पर और प्रसन्न थे। और बहु जब भी कोई कुछ पूछता है तो उनका पत्नी तो वो बोलती थी और इससे मेरे बड़ा भाग्य कैसे हो सकता है, जिन पति भगवान का अनन्य भक्त है ऐसे एक परम वैष्णव का चरण में आश्रित है उससे और कौन भाग्यशाली बन सकता है मेरे पति के रूप में, मैं बहुत खुश हूं। तो इस प्रकार है, तो सेवा करने लगे बहुत, और तो बीच में बहुत सारे हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे सेवा करने लगे, घर कभी आए नहीं, वहीं रहने लगे। लेकिन पत्नी रत्नावली बहुत खुश थी, सासू का सेवा करते थे और गोविंद और तीनों वहीं पर रहा करते थे। एक दिन सेवा करते करते एक बार श्रीनिवास बहुत प्रसन्न हो गए उनका सेवा में, तो ये शिष्य है श्रीनिवास गुरु है, लेकिन उनका सेवा में इतने प्रसन्न थे श्रीनिवास आचार्य ये भूल गए कि ये मेरे शिष्य है, तो उनका आसन पर जाकर बैठ जाते थे। ये भी शिष्य भी अपना श्रीनिवास आचार्य गुरु जी के आसन पर जाकर बैठते थे, और कोई मन में कोई मलिनता की कोई भावना नहीं है, भेदभाव नहीं है। केवल रामचंद्र वो ऐसे ही सोच रहे थे कि कैसे गुरु प्रसन्न हो, वो जैसे चाहते हैं वैसे ही अनुकूलतया तो उनका सेवा करने लगे। तो एक बार बहुत दिन सेवा करने के पश्चात उनको बुलाए, एकांत में बुलाए, बोले कि राम इधर आओ, तुमने विवाह किया था ना? हाँ गुरुजी। ना कब घर में गए थे? ना कभी नहीं, जिस दिन गया था जिस दिन विवाह हुआ था उसी दिन तो घर छोड़कर मैं आ गया आपके पास हूँ। ना तुम्हारे नव विवाहिता पत्नी तुम्हारे वो भी आपको स्मरण करते होंगे, जाओ एक बार उनका दर्शन करके आओ, कम से कम एक रात वहां ठहरो। ठीक है, गुरु का आज्ञा उन्होंने चल बसे, तो वहां से जाकर एक दिन एक रात उनका घर में ठहरे। तो जब दोनों पति पत्नी एक कमरा में रात को शयन करने गए तो रत्नावली पूछते हैं, प्रभु आपने गुरुजी का जो सेवा करते हैं तो गुरुजी का थोड़ा तो गुरुजी का विषय में आप बतलाइए, अब तक तो मैंने परोक्ष रूप से मैं दूसरों से सुना हूँ लेकिन आपका मुखारवंद से मैं सुनना चाहती हूँ। तो उन्होंने बताए, तो आरंभ किए, तो रात को आरंभ किए सुबह हो गया, जब सूर्य उदय हो गया खिड़की से रोशनी आने लगे तो फिर उन्होंने देखे अरे दिन हो गया मुझे जाना पड़ेगा, गुरुजी अभी स्नान करेंगे फिर उनका ठाकुर जी का सेवा है, तो स्नान से पूर्व मुझे उनका शरीर में तैल मर्दन करना है। तो उन्होंने भागने के लिए कोशिश की, लेकिन जाने से पहले अपना पत्नी रत्नावली से बोले कि देखो प्रिय अब मैं जा रहा हूँ, आप मन दुख नहीं करना। नहीं मैं कभी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप गुरु जी का सेवा करिए, क्योंकि देखो गुरु का सेवा और ये पतिव्रता होने के कारण उनको भी गुरु का फल कैसे, ये पति का फल कैसे पत्नी को मिलता है। तो वो बहुत खुश थी। तो जाते समय तो बोले कि एक बार तो पत्नी को आलिंगन कर लूं, तो उन्होंने आलिंगन करने जब करने गए तो उनका माथे के सिंदूर उनका कपड़ा में लग गया, तो उनको होश नहीं है, उनका तो एक ही है गुरु जी का स्नान का टाइम हो गया अभी मुझे उनका तैल मर्दन करना है, और ऐसे ही भागे भागे आने लगे। तो आकर देखे कि उस समय हाँ ये नरोत्तम दास ठाकुर जे के निकुंज मंजरी है, नहीं क्या चंपक मंजरी, नरोत्तम दास चंपक मंजरी, तो उन्होंने यद्यपि उन्होंने लोकनाथ का शिष्य थे पर ये दोनों में इतने प्रेम भाव थे, ये दोनों रामचंद्र और नरोत्तम, ये दोनों, तो दोनों जाकर श्रीनिवास आचार्य के पास रहने लगे और दोनों उनका सेवा करने लगे। तो अब जो रामचंद्र का जो सेवा है, बुहार झाड़ू देना, तो उनका एब्सेंस में जब उन्होंने गए तो उनको बोले नहीं कि मैं जा रहा हूं घर में, वो तो चुपके से चले गए। लेकिन नरोत्तम को पता नहीं है आज राम कहां गया। तो जब सुबह सुबह देख, रात को देखे आए नहीं, गुरुजी से पूछने के लिए संकोच और पूछे भी नहीं, तो जब ये झाड़ू दे रहे थे दिन में सुबह, तो आकर पहुंच गए और बोले कि, उन्होंने नमस्कार किया तो उन्होंने बोले कि कहां गया था, कहीं गया था। तो देखे उनका कपड़ा में इस सिंदूर का दाग दबा लगा था। तो उन्होंने बोले कि अरे तुम तो घर में गए थे अपना पत्नी से मिलने के लिए, मुझे क्यों छिपा रहे हो। नहीं नहीं छिपा नहीं रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी में मैं हूं, बाद में बात करूं। ना कहा क्यों, ना गुरुजी का स्नान का टाइम हो गया, अभी मुझे तैल मर्दन करना है। नरोत्तम बोले कि अरे तुम रात को घर में गए थे, पत्नी पति पत्नी एक रूम में कमरे में थे, तो कम से कम तो कपड़ा धो लो, स्नान करके जाओ, कपड़ा ये सब देखेंगे तो गुरुजी का क्या मनदशा होगी। तो उन्होंने इतना कहने पर भी उन्होंने इतना जल्दी, उनका मन में कुछ नहीं, कुछ खराब काम हुआ है किया ही नहीं उन्होंने, तो मन में उनका विरसता नहीं है, लेकिन एक ही चिंता है कैसे गुरुजी का समय चले न जाए, मैं उससे पूर्व जाकर उनको तैल मर्दन करूं। तो उन्होंने चले गए और जब उनका बात मानी नहीं तो उन्होंने चलने लगे, तो झाड़ू दे रहे थे उसे झाड़ू में ला करके रुको, मारा उनको एक कमर पीठी में उन्होंने मारा वो झाड़ू से, फिर भी उनको कुछ ये नहीं, उन्होंने तो ये सबको दरकिनार करके उन्होंने चले गए, गुरु जी को तैल मर्दन किए और स्नान करवाए तो फिर आ गए। तो नहीं, जब उन्होंने झाड़ू में प्रहार किया तो उस समय उनका होश आया, अरे सचमुच ये तो नरोत्तम ठीक कह रहे हैं, मैं गुरुजी के पास जाऊं तो रात को मैंने सोया तो ये था, सोया भी नहीं, नींद नहीं ली। तो उन्होंने तो बोले कि ठीक है स्नान करके आता हूं। तो स्नान का ये सही, जब उन्होंने गए तो नरोत्तम देखे कि देर होगा बेचारा, वो उसको मैंने पीटा और गया स्नान करने के लिए, इसी वक्त मैं जाऊं गुरु जी को तेल मर्दन करके ये करूं। तो वो जब जाकर तेल मर्दन करने लगे, देखे गुरु जी का यही पीठी में जहां उन्होंने प्रहार किया था रामचंद्र को, तो वहीं पे उन्होंने पूरा वो झाड़ू का चिन्ह निशान पूरा एकदम ऐसे ही है। तो उसी समय जब उन्होंने खोलकर उन्होंने देखे कि ये कैसे लाल लाल दिख रहा है और झाड़ू का निशान ही है, ये कैसे ये हुए। तो उन्होंने गुरु कैसे अंतर्यामी उस सारे बात जानते हैं, ये नरोत्तम छिपा ना रामचंद्र उनसे बोले ना नरोत्तम बोले, तो श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं अपना आप ये मर्दन कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि बार वाह दिन में झाड़ू और रात को, हाँ वो बोले नरोत्तम दास बोले कि इस हाथ से मैंने नरोत्तम को मारा, मैंने बड़ा अपराध किया, बहुत एक वैष्णव का अपराध किया, आज रात को इस हाथ को मैंने आग में जलाकर नष्ट कर दूंगा, प्रायश्चित कर लूंगा। लेकिन फिर इस समय जब उन्होंने सेवा कर रहे थे, उस समय सुबह देख रहे थे, तो गुरु श्रीनिवास आचार्य लेटे लेटे उन्होंने बोले कि वाह बारे वाह, दिन में झाड़ू और रात को अपराध के लिए क्षमा के लिए हाथ को जलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो नरोत्तम दास तो हक्का बक्का रह गए, क्या बात, कैसे मैंने, कैसे इनको कैसे पता है ये बात, ना रामचंद्र बताया ना मैंने बताया। तो उन्होंने समझ गए किस प्रकार ये दिव्य स्थिति में है। और तो दोनों ऐसे ही तीनों शरीर है लेकिन एक आत्मा है, श्रीनिवास ये सबसे उच्च स्तर के ही है और इनका ये दोनों शिष्य तुल्य लगेंगे, पर ये दोनों को अपना ये आप मानते थे। तो वही अभी ये हो गया ना, तो तो प्रकट हो गया कि गुरु जो श्रीनिवास रामचंद्र को अपना मानते थे, देखो गुरु शिष्य में कैसे अभेद स्वरूप है, तो उनको मैंने प्रहार किया और प्रहार आया गुरु के पास। तो इस प्रकार उन्होंने टाइम हो गया तो इस प्रकार उन्होंने श्रीनिवास आचार्य के पास रहे। तो श्रीनिवास आचार्य उनको नरोत्तम दास ठाकुर से बोले कि उनको लेकर सभी गोस्वामी को दर्शन कराओ। उन्होंने वृंदावन दर्शन करवाए। कौन सा कुंज में उनका समाधि है, इनका रामचंद्र कविराज का कुंज विलासना ऐसे ही, बस बढ़िया सुंदर नाम है। तो उस पर तो धीरे धीरे सारे बड़े बड़े वैष्णव सब चले गए, तो उनका विरह में ये भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। अंतर्गतवा उन्होंने ये वृंदावन में शरीर त्याग करके फिर भगवत धाम चले गए। तो आओ रह गए गोपाल भट्ट स्वामी, फिर बाद में करेंगे। टाइम हो गया। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र कविराज गोस्वामी की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्रीनिवास आचार्य की, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।